अध्याय धधकती नजरें जब शक अंगारे बन जाए। रात 3:25, हवेली का मुख्य हॉल। पार्टी अब भी अपने चरम पर थी। शराब की बोतलें इधर उधर रखी थीं, कुछ खाली कुछ आधी, और बाकी लोग कुछ नशे में झूमते कुछ बातचीत में डूबे। अखिल राजवंशी एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में विस्की का ग्लास था, लेकिन उसके होठों ने उसे छुआ तक नहीं था। उसकी निगाहें तेज थीं, जैसे किसी एक सवाल को निगल रही हों। कानों में तेज म्यूजिक था, मगर दिल में एक सन्नाटा। वो एक बार फिर चारों ओर देखने लगा। वो वहां नहीं थी, रैना। वो हर कोने पर नजर डाल चुका था, डांस फ्लोर, बार, सोफा एरिया, यहां तक कि लॉन का पिछला दरवाजा भी गायब। और फिर उसने विवेक को ढूंढने की कोशिश की, उसका वो दोस्त जिसने ये पार्टी होस्ट की थी और जिसकी आंखों में कुछ घंटों पहले से ही कुछ और चमक रही थी। अखिल की भौहें सिकुड़ गईं। विवेक कहाँ है? उसने धीरे से अपने पास खड़े दोस्त अर्पित से पूछा। अर्पित, जो अब तक तीसरे ड्रिंक पर था, थोड़ा झूमते हुए बोला, विवेक, अरे वो तो यार ऊपर वाले रूम में गया होगा, शायद रैना के साथ। ग्लास अखिल के हाथ से गिरते गिरते बचा। क्या? हाँ, वो बोला था कि उसे थोड़ी देर बात करनी है। तू तो जानता है विवेक को, कहाँ छोड़ता है वो। अखिल का जबड़ा कस गया, उसकी सांसें धीमी पर भारी हो गईं। म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन अब उसकी धुनों में एक झनझनाहट थी, जैसे हर बीट उसके भीतर कोई दरार भर रही हो। रैना उसके साथ? उसके जहन में एक सीन चमका, कुछ घंटे पहले रैना की आंखें, उसका चेहरा, और वो लम्हा जब वो अपनी गरिमा को थामे हुए मंच से उतरी थी। अखिल उठ खड़ा हुआ, उसने अर्पित का कंधा पकड़ लिया। तूने ठीक से देखा था? अरे हाँ भाई, खुद देखा। और तू जानता है विवेक कितना तेज है इन चीज़ों में, तुझे पता भी है वो कब किसे कहाँ ले जाए। अखिल की नज़रें अब लाल होने लगी थीं। वो ना तो चीखा ना कोई प्रतिक्रिया दी, बस एक गहरी सांस ली और पार्टी हॉल के हर कोने को एक बार फिर देखा। अब उसे ये समझ आने लगा था कि उसका गुस्सा केवल विवेक पर नहीं है, बल्कि खुद पर है। मैंने रैना को यहाँ कैसे देखा? क्यों उसे कमज़ोर समझा? या फिर क्यों अब भी उसे देखकर मेरे भीतर कुछ हिलता है? उसने दूसरा दोस्त जय को बुलाया, जो अब तक डीजे के पास खड़ा था। जय, तूने रैना को देखा क्या? नहीं भाई, काफ़ी देर से दिखी नहीं। क्यों? और विवेक? जय ने हंसते हुए कहा, ओह, विवेक तो अपने क्विक टॉक्स में बिजी होगा, तू समझ तो गया ना। उसने आंख मारी, लेकिन अखिल के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो सीधा खड़ा रहा। अब उसकी आंखों में वो पुरानी आग थी, जो उसने शायद सालों से दबा रखी थी। उसी वक्त हवेली के दूसरे सिरे से एक वेटर आता है। सर, किसी ने ऊपर एक ड्रिंक मंगाई थी, नाम नहीं बताया, मुझे बोला गया था किसी को बताना मत, लेकिन मैंने देखा सर, वो लड़की, वही डांसर मैम, वो भी ऊपर गई थी। अब अखिल की मुट्ठी बंद हो चुकी थी। बस रुक विवेक, पर फिर उसने कदम पीछे खींच लिए। नहीं, वो अभी नहीं जाएगा, वो देखेगा, समझेगा और तब कुछ बोलेगा, क्योंकि अगर आज विवेक ने सच में हद पार की तो ये सिर्फ एक पार्टी नहीं रह जाएगी। अखिल वहीं हॉल के बीच खड़ा था, संगीत अब भी चल रहा था। दिल ना किसी से लगाना, ये दुनिया है पागल, पर आज उसका दिल फिर भी लग गया था उससे जिससे वो नफरत करता था। दिल ना किसी से लगाना, ये दुनिया है पागल, पर आज उसका दिल फिर भी लग गया था उससे जिससे वो नफरत करता था। या शायद नफरत की आड़ में वो मोह अब भी छुपा था, जो कभी जताया नहीं गया और अब चुभने लगा था। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं, जैसे किसी अंततः खो चुके रिश्ते की चुप चीखें अंदर गूंज रही हों। अगर वो सच में तकलीफ में है तो क्या मैं अब भी चुप रहूंगा? अखिल की उंगलियां ग्लास के गले को थामे थीं, पर दिल अब किसी और सोच में डूबा था। अतीत से परे आज की रात एक नया युद्ध रच रही थी, शक और अधिकार के बीच। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, कोनों में लगे बड़े पर्दे और बीच में एक आलीशान सोफा। कॉफी टेबल पर दो ग्लास रखे थे, एक भरा हुआ, दूसरा अधूरा। रैना कमरे के एक कोने में खड़ी थी और सामने विवेक, वही शख्स जिसने पार्टी रखी थी और जिसे रैना अब तक एक दोस्त की तरह समझ रही थी, या सिर्फ दिखावा कर रही थी। वो वहां से निकलना तो चाह रही थी, लेकिन नशे में चलना मुश्किल था। आराम से बैठो यार, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम थक गई होगी, नीचे बहुत भीड़ हो गई थी। रैना हल्के स्वर में बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ, पापा को दवा देनी है, वापस भी जाना है। विवेक पास आया और धीरे से उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रखा। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो रैना, पहली बार देखा कि कोई मजबूरी को इतनी गरिमा से संभाल सकता है। रैना ने एक औपचारिक मुस्कान दी, प्लीज बातें मत बढ़ाइए, मुझे जाने में मदद करो। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की। कभी सोचा है तुम जैसी लड़की को कोई सच में सहेज कर रखे? तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो खूबसूरती बन चुका है। रैना दो कदम पीछे हट गई। बस कीजिए विवेक, मुझे अब जाना है। विवेक थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर जैसे मुस्कुराया, ठीक है, जाने से पहले एक बार बस। तभी दरवाजा तेजी से खुला। अखिल, सूट की बाहें चढ़ी हुई, माथे पर पसीना और आंखों में सुलगती आग। विवेक, छोड़ दो इसे अभी,
कमरे की हवा ठिठक गई। विवेक ने चौंक कर देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया। अरे तू, मैं, और ये तुम्हारी पार्टी नहीं, मेरा सब्र है जिसमें तुम खड़े हो। विवेक ने एक पल रैना को देखा, फिर अखिल को। ओ, उसने जैसे कोई बात समझ ली। तू तो अब तक इससे नफरत करता था, तो अब क्या हुआ, कहीं दिल फिर से बहक गया क्या? अखिल की आंखों में अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ चेतावनी। विवेक, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे जाने दे। विवेक ने दोनों हाथ उभाए जैसे हथियार डाल दिए हों। ठीक है भाई, तेरी बात कौन टाले, मैं क्या कह रहा था, बस थोड़ी बातें कर रहे थे। और हाँ, वो कमरे से बाहर जाते हुए मुस्कुराया, इसका ख्याल रखना, बहुत नाजुक चीज है, बहुत खूबसूरत। दरवाजा बंद हो गया। रैना वहीं खली थी, स्तब्ध। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। अखिल ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। रैना की आंखें अब भी चुप थीं, लेकिन उनमें बहुत कुछ था, डर, झिझक और एक टूटी हुई इज्जत जिसे उसने अपनी मेहनत से बचाया था। अखिल कुछ कहने ही वाला था, फिर रुका। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, कोनों में लगे बड़े पर्दे और बीच में एक आलीशान सोफा। कॉफी टेबल पर दो ग्लास रखे थे, एक भरा हुआ, दूसरा अधूरा। रैना कमरे के एक कोने में खड़ी थी और सामने विवेक, वही शख्स जिसने पार्टी रखी थी और जिसे रैना अब तक एक दोस्त की तरह समझ रही थी, या सिर्फ दिखावा कर रही थी। वो वहां से निकलना तो चाह रही थी, लेकिन नशे में चलना मुश्किल था। आराम से बैठो यार, विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम थक गई होगी, नीचे बहुत भीड़ हो गई थी। रैना हल्के स्वर में बोली, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ आई हूँ, पापा को दवा देनी है, वापस भी जाना है। विवेक पास आया और धीरे से उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रखा। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो रैना, पहली बार देखा कि कोई मजबूरी को इतनी गरिमा से संभाल सकता है। रैना ने एक औपचारिक मुस्कान दी। प्लीज बातें मत बढ़ाइए, मुझे जाने में मदद करो। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की। कभी सोचा है तुम जैसी लड़की को कोई सच में सहेज कर रखे? तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वो खूबसूरती बन चुका है। रैना दो कदम पीछे हट गई। बस कीजिए विवेक, मुझे अब जाना है। विवेक थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर जैसे मुस्कुराया, ठीक है, जाने से पहले एक बार बस। तभी दरवाजा तेजी से खुला। अखिल, सूट की बाहें चढ़ी हुई, माथे पर पसीना और आंखों में सुलगती आग। विवेक, छोड़ दो इसे, अभी। कमरे की हवा ठिठक गई।
विवेक ने चौंक कर देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया। अरे तू, मैं, और ये तुम्हारी पार्टी नहीं, मेरा सब्र है जिसमें तुम खड़े हो। विवेक ने एक पल रैना को देखा, फिर अखिल को। ओ, उसने जैसे कोई बात समझ ली। तू तो अब तक इससे नफरत करता था, तो अब क्या हुआ, कहीं दिल फिर से बहक गया क्या? अखिल की आंखों में अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ चेतावनी। विवेक, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे जाने दे। विवेक ने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे हथियार डाल दिए हों। ठीक है भाई, तेरी बात कौन टाले, मैं क्या कह रहा था, बस थोड़ी बातें कर रहे थे। और हाँ, वो कमरे से बाहर जाते हुए मुस्कुराया, इसका ख्याल रखना, बहुत नाजुक चीज है, बहुत खूबसूरत। दरवाजा बंद हो गया। रैना वहीं खड़ी थी, स्तब्ध। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। अखिल ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। रैना की आंखें अब भी चुप थीं, लेकिन उनमें बहुत कुछ था, डर, झिझक और एक टूटी हुई इज्जत जिसे उसने अब तक अपनी मेहनत से बचाया था। अखिल कुछ कहने ही वाला था, फिर रुका। उसने खिड़की की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, मेरी इस कहानी के साथ साथ आप मेरी दूसरी कहानियां भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए बस ऊपर दिए गए मेरे प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करें। जैसे ही आप मेरे प्रोफाइल पर पहुंचेंगे, वहां आपको मेरी सभी कहानियों की लिस्ट मिल जाएगी। हर कहानी एक अलग एहसास, एक अलग सफर लेकर आई है। तो आइए, इन कहानियों की दुनिया में भी मेरा साथ दें।